श्रवण मात्र से मिट जाती है, श्रवण मात्र से मिट जाती है अंतर मन की व्यथा।
जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा।
वो फकीरी का अंदाज, घर परिवार में रहकर कैसे फकीर बन जाता है एक गृहस्थ संत। दो प्रकार के संत हैं, एक विरक्त है, एक गृहस्थ है। विरक्त की भी परंपरा हमारे देश में है, बड़ी सम्माननीय परंपरा है। एक दूसरा संत है गृहस्थ संत। गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है, सभी आश्रमों की जननी है यार। कैसे घर में रहते, परिवार में रहते फकीर हो जाता है एक साधक, एक विहंगम योग का पथिक उस अनंत आनंद से जुड़ जाता है। ऐसा दिव्य स्वरूप हो जाता है उसका। वो जान लेता है कि संसार में आए हैं तो सुख मिलेगा, दुख मिलेगा, ये क्रम चल रहा है। अनेक जन्म और जीवनों से ये क्रम चल रहा है। संसार में आए हैं तो मिलेगा। गुलाब का फूल है, इसमें कांटे लगे हैं, दोनों हैं इसमें साहब, दृष्टि की बात है हमारी, लेकिन सुख दुख मिला है। प्रत्येक संसार के सुख में दुख है और दुख में भी सुख का अंश तो है। सुख में दुख है और दुख में सुख है, बड़ा घूम चक्कर है, घन चक्कर है, ये ऐसा चक्कर है। दुख में रोते हैं हम दुख में रोते हैं। क्यों रोते हैं? रोते क्यों? सुख के लिए रोते हैं, और किस लिए रोते हैं? रो रहे हैं दुख में, रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं भैया? क्या बात है, क्या मामला है? अरे सुख की अभीप्सा है, इसलिए तो रो रहे हैं। कुल आनंद के लिए, कुल सुख के लिए हम कर रहे हैं जो कुछ भी करते हैं, क्यों रो रहे हैं? रो रहे हैं सुख के लिए, रो रहे हैं, सीधी सी बात है। दुख को कम कर रहे हैं और निकल रहा है बाहर हमारा। हमें सुख चाहिए, हमें आनंद चाहिए। दुख में हम सुख ढूंढते हैं, सुख की तरफ बढ़ना चाहते हैं, दुख को हटाना चाहते हैं, इसलिए रोते हैं। ये सब टेम्पररी है। ये सब चक्र है साहब। ये मन के साथ ये भाव है, ये संस्कार है, ये मन स्थिति है। जितना आत्मा के पास है उससे सब संचालित हो रहा है। हर्ष शोक का अनुभव हो रहा है, मूल में वो आनंद और सुख छिपा है, उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए दुख मिलने पर रोते हैं, रोकर डिप्रेशन कम करते हैं, तनाव कम करते हैं, हल्के हो जाते हैं, सुख की तरफ बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। वो जानता है साधक, संसार में आए हैं तो चक्र चल रहा है, चलेगा, कौन बचाए? जीवन मुक्त भी भोगता है, तो प्रारब्ध भोगेगा, शरीर है तो कुल भोगेगा, वो भी बचेगा कैसे? जितना शरीर के साथ मिलना है वो मिलेगा। ऐसी जिज्ञासा आई है श्रीमती माया प्रधान की सिक्किम से, गैंगटोक से जिज्ञासा भी आई है। चल रहा है सुख दुख का क्रम, चल रहा है और साधक जानता है, वो साधक जानता है, आए हैं तो ऊपर नीचे होगा, दिन है ये रात है, ये सुख है ये दुख है, गुलाब का फूल है कितना कांट लगल भाई में, आए हैं तो मिलेगा ये सब, चल रहा है जीवन इसमें। साधक क्या सोचता है, साधक क्या चिंतन करता है, वो यही चिंतन करता है कि संसार में आए हैं तो ये सब चीजें हैं साथ में, प्रारब्ध है, वर्तमान का कर्म है, उसका भी फल है, ना केवल प्रारब्ध का बल्कि वर्तमान के कर्मों का फल भी इस जन्म और जीवन में मिल जाता है और आगे आने वाले जन्म और जीवन में भी मिलता है। वर्तमान के अनेक कर्म हैं जो इस जन्म और जीवन में भोग लिए जाते हैं, आगे के लिए भी अनेक हमारे जो कर्म हैं वो कर्माशय में संचित हो जाते हैं। तो आए हैं तो मिलेगा, आए हैं तो मिलेगा, लेकिन साधक यही चिंतन करता है, इसी में दृढ़ हो जाता है कि संसार के किसी सुख में, संसार के किसी दुख में इतनी शक्ति नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि आत्मा को हमें सेवा से, सत्संग से, साधना से दूर कर सके, आत्मा के कल्याण से ही दूर कर सके। संसार के किसी सुख और दुख में इतनी ताकत नहीं है, यही सोचता है, यही चिंतन करता है। सुखों को पाकर अत्यंत प्रफुल्लित नहीं हो जाता और दुखों के मिलने पर छाती नहीं पीटने लगता, अनुभव तो है उसे होगा, लेकिन एक सहज दृष्टि, सम्यक विवेक और सहज ज्ञान से वह आगे बढ़ता है अपने जीवन में, विवेकी होता है वह। प्रारब्ध का कर्म इस जन्म में भोग रहे हैं तो वर्तमान कर्म क्या है? हम प्रारब्ध का भी भोग रहे हैं और वर्तमान में भी तो चल रहे हैं। प्रारब्ध को भोगना है, जो शरीर के साथ जितना मिलना है वो मिलके रहेगा, और ये प्रारब्ध आया कहां से? प्रारब्ध आया है संचित कर्मों में से, संचित कर्मों में से उतने ही कर्म प्रारब्ध के रूप में प्राप्त होते हैं, जिनका इस जन्म और जीवन से भोग कर लिया जाना है उतना ही मिलेगा। कहां से आएगा? आएगा संचित में से। कहां संचित है? चेतन शक्ति के आधार पर वह संचित है, वो कर्माशय है, कर्मों का कोष है। संचित कर्मों में से उतने ही कर्म प्रारब्ध के रूप में प्राप्त होते हैं, जिनका इस जन्म और जीवन से भोग कर लिया जाना उतना मिली, उतना आई। यह जिज्ञासा श्रीमती माया प्रधान जी की गैंगटोक सिक्किम से बहुत अच्छी जिज्ञासा है। कर्म का क्षेत्र बहुत व्यापक है और बहुत बार त्रुटियां हो जाती हैं, कर्म के भेद और इसके स्वरूप को समझने में बहुत बार इधर का उधर हो जाता है, संशय का क्षेत्र है ये। गहना कर्मणो गति कर्म की गति बड़ी गहन है साहब। हम केवल प्रारब्ध का ही कर्म फल भोग नहीं भोग रहे, प्रारब्ध को तो भोगना ही है। हम जिस शरीर में हैं, जिस जीवन में हैं, वो किसका फल है? वो प्रारब्ध का ही फल है। ईश्वर जानता है किसको कहाँ भेजना है, उसको कहाँ भेजना है, इसको कहाँ भेजना है, उसको किधर जाना है, इसको किधर जाना है, वो कहाँ जाएगा, वो सब ईश्वर तय करता है। कर्माध्यक्ष कौन है? फल प्रदाता कौन है? न्यायाधीश कौन है? अन्याय थोड़ी करेगा किसी के साथ। जिसको जहां भेजना है वो भेज देता है, जाओ वहां पर, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं करता। वो न्यायाधीश है, वो कर्माध्यक्ष है, वो फल प्रदाता है। इसको उसको, इनको उनको, किसको किसको, कहां कहां, कैसे जाएगा, वो भेज देता है उसको। जो प्रारब्ध के अनुसार सब प्रारब्ध है, उसने फल प्रदाता ईश्वर है, न्यायाधीश ईश्वर है, कर्माध्यक्ष ईश्वर है, हमारे कर्मों का साक्षी है, वो न्यायाधीश है, अन्याय नहीं करता वो। किसी के साथ कोई अन्याय नहीं करता। प्रारब्ध का तो भोग रहे हैं, लेकिन वर्तमान कर्म के भी फलों को भोगता है मानव। कुछ के इस जन्म में, कुछ फिर चला जाएगा स्टोर रूम में आगे के लिए, अगर योगाग्नि में नष्ट नहीं कर पाया वो तो। अब कुछ ऐसे कर्म हैं क्रियमाण जो तो सहज स्वाभाविक रूप से हमारे साथ हो रहे हैं, तत्क्षण उसका फल मिल रहा है वर्तमान के कर्म का, इसे हम कहते हैं क्रियमाण कर्म, जो वर्तमान में चल रहा है। अभी हम सुन रहे हैं सत्संग, स्वरवेद की वाणी सुन रहे हैं, तो फल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तत्क्षण फल मिल रहा है, सब सुन रहे हैं, भूख लगी है, भोजन कर लिया, तत्क्षण फल मिला। दैनंदिन के कर्म है, अनेक दैनंदिन के कर्म है, तत्क्षण फलदायी होते हैं। वर्तमान के कर्म है, तत्क्षण फल मिल रहा है हमें। अनेक कर्मों के फल हमें इसी जन्म और जीवन में प्राप्त हो जाते हैं, और अनेक ऐसे कर्म हैं जो आगे जन्म और जीवन के लिए शेष रह जाते हैं। दोनों का क्रम चल रहा है, एक तरफ प्रारब्ध है और दूसरी तरफ वर्तमान का कर्म है हमारा। दोनों का समन्वय है हमारे साथ। प्रारब्ध तो पा गया, वर्तमान का कर्म ठीक नहीं है, तब तो खेल बिगड़ जाएगा, है ना? प्रारब्ध है ठीक है, लेकिन वर्तमान के कर्म भी धर्मयुक्त हो, आत्मा के अनुकूल हो, तब श्रेष्ठता होती है साहब। और पूर्व के अच्छे कर्मों का फल प्राप्त कर रहा है और वर्तमान में मामला गड़बड़ है, तो एक कौन भोगेगा? उसको भोगना पड़ेगा। पूर्व के अच्छे प्रारब्ध कर्मों का फल मिल रहा है तो बढ़िया है, लेकिन वर्तमान में गड़बड़ है तो ये कहां जाएगा, ये किसके खाते में जुड़ेगा? साक्षी है ईश्वर, आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से स्थित है, हमारे प्रत्येक मन के संकल्पों को जानता है वह, हमारे भाव चिंतन को सहज रूप से जानता है वह। उससे छिपकर, उससे बचकर किसी प्रकार के कर्म का कभी भी कोई संपादन नहीं हो सकता। हमारी आत्मा के भीतर परमात्मा है, दूध के कण कण में मक्खन ही तो है, बहुत मक्खन है साहब, दूध के कण कण में मक्खन भरा है, मेहंदी में लाली छिपी है, तिल में तेल है, हमारे भीतर इतना सब कुछ है। ईश्वर ही हमारे भीतर स्थित है, आत्मा के भीतर अंतरात्मा रूप से परमात्मा स्थित है। हमारे प्रत्येक कर्मों का साक्षी है, फल प्रदाता है, न्यायाधीश है। सत्संग में गहन रुचि होनी चाहिए, जितना अधिक सत्संग हो उतना ही हमें प्रिय लगता है, प्रिय लगना चाहिए। सदैव इसी अध्यात्म की महफिल में जीना, अपने जीवन को आगे बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। आज प्रथम दिन के लिए इतना पर्याप्त समझता हूँ, कल पुनः आप सबों की सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। कल प्रातः काल आठ बजे से ही वैदिक महायज्ञ में आहुतियों को हम प्रदान करेंगे, सभी समय से यहाँ उपस्थित होंगे। समय से वैदिक महायज्ञ में हम वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भौतिक एवं आध्यात्मिक उत्थान के लिए आहुतियों को प्रदान करेंगे।
स्वरवेद महामंदिर धाम वाराणसी, स्वरवेद अमर हिमालय योगी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज द्वारा योग की शीर्ष अवस्था में अनुभूत परमात्म ज्ञान की दिव्य अभिव्यक्ति है। इस अद्वितीय आध्यात्मिक महाग्रंथ के पठन मात्र से हमारा भौतिक